ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 12 मई 1967। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। अरे उत्तर भी नहीं देते हो कि बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक बनाते हैं, तो विश्व का भी मालिक बनाते हैं, ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक, और बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तो बड़ा कौन हुआ? तुम्हारा तो डबल मालिकपना है। बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे समझ कर फिर नमस्ते करते हैं कि बाबा आप ही हमें विश्व का और ब्रह्मांड का मालिक बनाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। इसलिए हम आपको ही नमस्ते करते हैं। मुसलमान लोग भी मालिकम सलाम, और वालेकुम सलाम कहते हैं। तुम बच्चों को भी खुशी है जिनको निश्चय के बिना यहां तो कोई आ भी नहीं सकते हैं। यहां जो भी आते हैं वो समझते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं, हम तो डायरेक्ट भगवान के पास जाते हैं। मनुष्य बाप के पास व मनुष्य टीचर के पास व मनुष्य गुरु के पास तो जाते नहीं है। तुम आते ही हो रूहानी बाप, रूहानी गुरु, रूहानी टीचर के पास। वो मनुष्य गुरु तो अनेक प्रकार के होते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में ये भी है कि रचयिता और रचना के ज्ञान को कोई भी नहीं जानते, सब नेति नेति करते आए हैं। ना जानने के कारण उनको फिर आर्फन कहा जाता है। आर्फन अर्थात जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हम सभी आत्माओं का वो एक ही बाप है। सिर्फ इतना ही नहीं जानते हैं, ये भी जानते हैं कि वो बाप निराकार है। निराकार सिर्फ बिंदु रूप में ही नहीं है, वो आकर टीचर गुरु का भी रूप धारण करते हैं। टीचर के रूप में पढ़ाते हैं और गुरु के रूप में सदगति करते हैं, परंतु फिर रोला कर दिया है क्या? गीता में साकार कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण का नाम डालने से सारी ही गड़बड़ हो जाती है। ऐसे तो गीता है सर्वशास्त्र में ही श्रीमद् भगवत गीता उत्तम ते उत्तम शास्त्र है, परंतु उस शासन करने वाले विधान गीता का रचयिता कृष्ण को बनाई दिए। बाहर की दुनिया में ही नहीं बना दिया है, बाहर की दुनिया तो बाद में बनती है, पहले तो शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल के पीरियड में, ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही उन तथाकथित ब्राह्मणों ने जो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले हैं उन्होंने गीता ज्ञान में दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा का नाम डाल दिया, जिसके लिए वो कहते हैं कृष्ण की आत्मा। उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि गीता का साकार भगवान सिवाय कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के कोई हो नहीं सकता। इस भूल ने ही भारतवासियों को तुच्छ बुद्धि बनाई दिया। भले गीता को कहते हैं सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, शासन करने का उत्तमते उत्तम विधान, परंतु उस विधान को बनाने वाला गीतापति भगवान ईश्वर के बजाय साकार कृष्ण को डाल दिया। माना ब्रह्मा को गीता का भगवान बनाई दिया। गीता का भगवान कोई साकार मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि गीता को ही माई बाप कहा जाता है, और जो भी शास्त्र आदि हैं उनको माँ बाप नहीं कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। तो माता के साथ पिता भी चाहिए, कोई विधवा माता तो नहीं है। गीता माता का पति कृष्ण उर्फ दादा लेखराज, ये बात ही उल्टी कर दी। यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा को अपने स्वरूप का पता नहीं चला, अपने साक्षात्कारों का स्वयं पता नहीं चला, वो भटकते रहे, अपने गुरु के पास भटके, वाराणसी में विद्वान आचार्यों के पास भटके, आखिरी न अपनी पुरानी गद्दी कलकत्ते में जब पहुंचे तो उनको अपने साक्षात्कारों का ज्ञान हुआ। गीता माता के द्वारा डायरेक्ट तो रचयिता गीता माता हुई। दादा लेखराज जो कृष्ण की आत्मा है वो बच्चा हुई, बच्चा मां का पति कैसे बन गया? माता सर्वशास्त्र शिरोमणि ही गाई जाती है, और जो भी शास्त्र हैं सब गीता माता के बाल बच्चे हैं। लेकिन गीता माता को शासन करने वाला शासक कौन? जो श्रेष्ठते श्रेष्ठ शासक कहा जाता है उसका नाम है ईश्वर। ईश माना शासन करता, वर माना श्रेष्ठ। इस सारी सृष्टि में ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जो उससे अच्छा शासन करके दिखाए। वो निराकार ज्योति बिंदु शिव इस सृष्टि पर जब आते हैं तो मनुष्य सृष्टि के बाप राम बाप में प्रवेश करते हैं और दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का अर्थ बताते हैं। उन साक्षात्कारों का रहस्य कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की ब्रह्मा को डायरेक्ट नहीं मिलता, पिता से माता के थ्रू मिलता है। गीता माता और उसका गीता पति भगवान फिर कौन हुआ? यज्ञ के आदि की ही बातें हैं, बाद में फ्रिक्शन पड़ गया। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई तो मतभेद पैदा हो गया। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। जो बच्चे निमित्त बने वो सब अलग कैटेगरीज के थे। कारण या कारण वो यज्ञ पिता की आत्मा यज्ञ छोड़ करके गई। मूल कारण तो यही था कि आज में संपूर्ण ज्ञान नहीं था, अधूरा ज्ञान था। वो ही संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते थे। इस षष्ठ चक्र का विशाल ज्ञान तो अभी आया है। जबकि वो यज्ञ के आदि की गीता माता भी चली गई, और बाद में ब्रह्मा का टाइटल दादा लेखराज ब्रह्मा को मिला। जिनको टाइटल मिला उनके द्वारा परमात्मा शिव ने गीता ज्ञान तो दिया, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहा जाता। अमृत तब कहा जाता है जब उस ज्ञान को मंथन किया जाए। अमृत पीकर देवताएं अमर बनते हैं। तो पहले पहले तो मनुष्य सृष्टि का पिता जो टाइटलधारी बनता है वो ही शरीर छोड़ देता है। इसलिए ब्रह्मा को अमर नहीं कहा जाता, अमर माना देवता। बाकी विष्णु और शंकर को तो देवता कहा जाता है। मूर्तियां बनती हैं, मंदिर बनते हैं, पूजा होती है, क्योंकि संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता बनते हैं। ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ के आदि में जो भी दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं थी, जो सारी मनुष्य सृष्टि से इकट्ठी की गई थी नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के लिए, वो सब दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में पलती रही। यज्ञ के आदि की माताओं ने भी ब्रह्मा को सपोर्ट किया। यज्ञ पिता राम बाप को सपोर्ट नहीं किया, राम बाप और उसके सूर्यवंशी बच्चे सब यज्ञ से जुदा हो गए। कौन पलते रहे? ब्रह्मा की गोद में चंद्रवंशी पलते रहे, इस्लाम वंशी पलते रहे, बौद्धी वंशी पलते रहे, हर धर्म की आत्माएं पलती रही। लेकिन मूल बीज जो थे वो चले गए। परिवार की हालत, जिस परिवार में बाप ही सरपरस्त न रहे तो हालत बिगड़ती ही जाती है। कहने को ये हुआ कि सन 47 में डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन हो गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई लगी, और उस लड़ाई की विभीषिका के बीच स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ कराची में। हिंदू मुसलमानों के बीच खून की नदियां बह रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और उस नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का छोटा सा मॉडल वहां तैयार हो गया, जो बड़े आराम से रहे पड़े थे। लेकिन वो मॉडल अल्पकाल का था, सदाकाल का मॉडल नहीं था। जैसे अजमेर में उसकी यादगार दिखाई जाती है भक्ति मार्ग में, स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है, ब्रह्मा की मूर्ति वहां पंडे पुजारियों के द्वारा पूजी जाती है, बाहर से आने वाले श्रद्धालु कोई उसको नहीं मानते। जैसे कि भक्ति मार्ग में आज भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। माउंट आबू में सिर्फ माउंट आबू में रहने वाले ही ट्रांसलाइट का चित्र बना करके ब्रह्मा की पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, बाकी सारी दुनिया तो नहीं मानती। कहने के लिए हो जाता है कि ब्रह्मा कुमारियों का भगवान आया हुआ है। सारे विश्व का पिता नहीं, भक्ति मार्ग में नाम रख देते हैं अजमेर, अज माने बकरा, मेड़ माने मेड़ा, भेड़ बकरियों का देश, जिनकी खासियत होती है कि एक भेड़ बकरी जिधर जाएगी उसके पीछे पीछे सारा झुंड जाएगा। ऐसी अंधश्रद्धा होती है इस्लामियों में। जो भी विधर्मी है उन विधर्मियों में सबसे मुख्य धर्म और पुराना धर्म और पावरफुल धर्म विदेशी और विधर्मी धर्म इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म की मैं करने वाली कोई बकरी एक कदम आगे बढ़ाती है तो सारे के सारे फॉलोअर्स उसको अनुगमन करते हैं। ये माउंट आबू की यादगार अजमेर में बनी हुई है। बाप आकर के पर्दाफाश करते हैं। ये सब माया का पंप एंड शो है। भले विदेशी लोग वर्ल्ड मेडल का टाइटल दे देते हैं, लेकिन वर्ल्ड मेडल का टाइटल दे देने मात्र से सारे विश्व के ऊपर वसुधैव कुटुंबकम की छाप लगाते हुए सारे विश्व का शासन नहीं हो सकता। वो शासन तभी हो सकता है जब विश्व की धात्री माता गीता माता के दिल पर शिवशंकर भोलेनाथ की छाप पड़े। इसलिए बोला है शिव की गीता से एक सेकंड में स्वर्ग और कृष्ण की गीता से 2500 वर्ष में दुनिया नरक बन जाती है। ये शूटिंग पीरियड की बात है। गीता माता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई है आज में भी थी, जैसे मम्मा और बाबा, दादा लेखराज और ओम राधे दोनों के संस्कार एक होकर के थे, जैसे कि विष्णु का रूप थे, ऐसे यज्ञ के आदि के फाउंडेशन में वो गुप्त पिता और गुप्त माता, वो दोनों हस्तियां विष्णु के रूप में पार्ट बजा करके चली गई। तो गायन होता है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु रूप तब प्रत्यक्ष होता है जब 10 साल की घोषणा जो मुरली में की गई थी वो प्रैक्टिकल में साबित होती है ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर, जिसमें बोला गया था 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश और नई ब्राह्मणों की इस दुनिया का संगठन प्रत्यक्ष हो जाएगा। 77 में वो दोनों आत्माएं लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती हैं, जिनके लिए बोला गया इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। जब ये 10 वर्ष की घोषणा की गई थी माउंट आबू से ब्रह्मा मुख के द्वारा कि आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, तो 66 से 5000 वर्ष पीछे की ओर चले तो कौन सा सन आता है, वही 1966 आता है 5000 वर्ष पीछे। परंतु उसमें से 10 वर्ष कम कर दे तो 1976 आता है ना, तो 1976 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। वो बाप नारायण के चोले से ही संसार में प्रत्यक्ष होता है, इसलिए मुरली में बोला है सबसे सहज और अच्छी याद का साधन है नारायण को याद करना। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नारायण बनना, नर से इससे ऊंचा पद कोई होता ही नहीं। ऊंचते ऊंच को याद करेंगे तो ऊंच ही बनेंगे। तो नारायण विश्व पिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, जिसे कहते हैं नर नारायण। जो भी 500-700 करोड़ नर हैं, उनका पालन करता उस विश्व पिता के साथ, विश्व की माता जगत जननी भी प्रत्यक्ष होती है, लेकिन बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रत्यक्ष होती है, वो तीसरी मूर्ति है। पहली मूर्ति ब्रह्मा, जिसने सहन शक्ति का पार्ट बजाया। दूसरी मूर्ति शंकर, जो बीज रूप ब्राह्मण आत्माओं की दुनिया में विश्व पिता का पार्ट बजाता है। और तीसरी मूर्ति है वैष्णवी देवी, जो यज्ञ के आदि में भी विश्व पिता के साथ ही थी। कोई बात में विरोधाभास नहीं था। बाद में जब दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं यज्ञ में आ गई तो विरोधाभास पैदा हुआ। तो 1976 में लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता रूपी जन्म ज्ञान के आधार पर प्रत्यक्ष हो जाता है। बुद्धि में बात आ जाती है, शिव की गीता जब प्रत्यक्ष होगी तो दुनिया स्वर्ग बनेगी। जिस गीता के ऊपर कृष्ण की छाप होती है, अर्थात यज्ञ के आदि से ही दादा लेखराज कृष्ण की छाप होती है, उस गीता से ब्राह्मणों की दुनिया में स्वर्ग नहीं बन सकता। बल ये भी निश्चित है कि झूठी गीता जब तक सच्ची गीता न बने, तब तक दुनिया का भी कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि झूठी गीता को पल्यूट करने वाले मनुष्य गुरु ही है। मनुष्य गुरुओं के द्वारा सब शास्त्रों में पॉल्यूशन पैदा किया गया, और उन मनुष्य गुरुओं में सबसे पहला मुख्य गुरु कौन है? किसे कहेंगे? इब्राहिम। इब्राहिम अगर पहला मुख्य गुरु हो जो अपन को सेवो हम समझ करके बैठ जावे, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी उसे पहला पहला गुरु बन करके प्रत्यक्ष होना चाहिए। लेकिन वो पहले प्रत्यक्ष नहीं होता। अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवो अहम, मैं ही भगवान का स्वरूप हूं, मैं ही गीता का भगवान हूं, ये आवाज इस्लाम धर्म के इब्राहिम की नहीं है, क्योंकि 2000 वर्ष के भक्ति मार्ग में कृष्ण की सोल भी जन्म लेती है 63 जन्मों का, और 63 जन्मों में गीता का भगवान किसको माना जाता है? दादा लेखराज कृष्ण की सोल, ओ ब्रह्मा को। ये संगम युग की शूटिंग की बात है। अब तक भी बेसिक नॉलेज के ब्राह्मणों की दुनिया में दादा लेखराज को ही गीता का साकार भगवान के रूप में मान्यता दी जा रही है, और जो ब्राड ड्रामा का 63 जन्म है द्वापर कलयुग के गिरती कला के जन्म, उनमें भी कृष्ण की आत्मा के दिल में ही सबसे जास्ती ये विश्वास बैठता है कि गीता का भगवान मैं हूं। और कोई नहीं हो सकता। तो 63 जन्म जिस आत्मा की बुद्धि में ये बात पक्की रही कि गीता का भगवान कृष्ण है, तो ब्राह्मणों की शूटिंग पीरियड की दुनिया में वो संकल्प साकार होने लग पड़ता है। उनकी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं सहज रूप से कि गीता माता का भगवान गीतापति शिव है, जो इस सृष्टि पर मनुष्य सृष्टि के पिता राम बाप में पहले पहले प्रवेश करता है। इसलिए सन 47 में जब ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलाना शुरू हुआ, तो जिस संस्था का नामकरण हुआ वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से हुआ। ब्रह्मा माने बड़ी मां, मां के नाम से क्यों हुआ? बाप कहां चला गया? क्योंकि ब्रह्मा की बुद्धि में ही ये बात बैठी हुई नहीं थी कि हमारा साकार में गुरु वास्तव में कौन था। क्योंकि जो वास्तव में उनका गुरु था, उनके साक्षात्कारों का रहस्य जिसके द्वारा समझाया गया, वो तो उनकी हीरे की दुकान में उनका नौकर था। तो नौकर के प्रति ये भाव कैसे आ सकता है? क्या कि वो हमारा सदगुरु है? जो भी जीवन में 12 गुरु किए ब्रह्मा ने, उन गुरुओं का भी गुरु है। सिर्फ इतना जानते थे बहुत होशियार है और बहुत सच्चा है, और सब गुरु झूठे, वाराणसी के विद्वान बुद्धि में बैठ गए, सब झूठे, और उसके प्रति ये श्रद्धा भाव रहा कि हमारी दुकान में ये जो नौकर था वो सच्चा था, लेकिन नौकर का भाव बैठने से बुद्धि में ये बात उड़ गई कि वो ही वास्तव में गीता का भगवान था। इसलिए मुरलियों में 66 से आना शुरू हुआ। जब मम्मा ओम राधे मृत्युशैया पर मुंबई के हॉस्पिटल में पड़ गई, तब ब्रह्मा को भी एहसास हुआ थोड़ा थोड़ा कि यज्ञ में सारी बिच्छू टिंडन भरे पड़े, इनमें एक भी हमारे काम का नहीं है। इसलिए मुझे भी ये बात फिर बाद में बोली गई कि तुम बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को लिखते हो, ये रंग है। माने ब्रह्मा को भी एहसास हुआ कि ब्रह्मा से भी ऊंची कोई हस्ती है जो यज्ञ के आदि में भी थी और अभी भी इस यज्ञ की वातावरण पर छाई जाने वाली है। इसलिए नाम डलवाया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। उससे पहले के जो छपे हुए 4 चित्र हैं, उनमें से 2 पहले पहले पुराने जो चित्र, त्रिमूर्ति गोला और झाड़ का चित्र, उसमें अभी भी देखा जा सकता है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, प्रजापिता शब्द उसमें नहीं है। 66 के बाद जो चित्र बनवाए गए, लक्ष्मीनारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र, उसमें वो प्रजापिता शब्द पड़ा हुआ है। लेकिन ब्रह्मा की स्मृति में फिर भी पक्का पक्का ये नहीं बैठा कि वास्तव में प्रजापिता वही था क्या, क्योंकि मुरली चलाने वाला तो शिव की सोल, ब्रह्मा तो स्वयं मुरली नहीं चलाता था। तो मुरली में ये बात जरूर बोली गई कि प्रजापिता शब्द ऐड होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने अपने नाम के आगे आज भी प्रजापिता लगाना उचित नहीं समझा। क्योंकि ब्रह्मा की ही बुद्धि में नहीं बैठा। आज भल ब्रह्मा की सोल सूक्ष्म शरीर के रूप में बेसिक नॉलेज के ब्राह्मणों की दुनिया की परवरिश कर रही है, लेकिन अभी भी उनकी बुद्धि में ये पक्का नहीं बैठा है कि गीता का भगवान कृष्ण के अलावा कोई दूसरा हो सकता है। और जब तक उनकी बुद्धि में ये गुत्थी नहीं सुलझी है, तब तक वो माता जिसके दिल पर कृष्ण की छाप बैठी हुई है यज्ञ के आदि से ही, उसकी सदगति नहीं हो सकती। माता गुरु नहीं बन सकती विश्व की, वो विश्व की माता गुरु बनती है तो सारी दुनिया का कल्याण होता है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। उस माता का पतन कब से हुआ?
द्वापर युग की शूटिंग शुरू होती है और उस माता का पतन शुरू हो जाता है, प्रकृति का पॉल्यूशन शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं प्रकृति माता। प्र माना प्रकष्ट रूपेण, कृति माने रचना, प्रकष्ट रूपेण जिसकी रचना हुई है वो द्वापर युग से प्रकृति पोल्यूट की जाती है और कलयुग के अंत तक आते आते पूरा ही पोल्यूशन हो जाता है, प्रकृति तामसी बन जाती है। तामसी बन जाती है तो उसका चैतन्य रूप महाकाली के रूप में संसार में सामने आता है और वो महाकाली सारी सृष्टि से प्रकृति को पोल्यूट करने वालों का, असुरों का सफाया कर देती है। तब आंख खुलती है, प्रकृति को पोल्यूशन करने वालों की आंख खुल जाती है और वो जान जाते हैं कि हमने क्या किया। गीता माता और गीता पति भगवान कृष्ण को मान करके कितना बड़ा भारी जंजाल फैला दिया। सारी मनुष्य सृष्टि पोल्यूट हो जाती है। वो संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है, स्त्री जाति जब पोल्यूट होती है तो सारा संसार पोल्यूट हो जाता है। स्त्रियों की जब महिमा बढ़ती है, प्योरिटी बढ़ती है तो सारा संसार स्वर्ग बन जाता है। कहते भी हैं यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है माता समझ करके वहां देवताएं निवास करते हैं और जहां नारियों का अपमान होता है वहां राक्षसी सृष्टि बन जाती है। आज घर घर का ये हाल है कि पिता खुदान खास्ता शरीर छोड़ जाए और बच्चों के हाथ में सत्ता आ जाती है। बच्चे माता की बात नहीं मानते, अपनी बात चलाते। माता जैसे उस घर में दासी बन करके रह जाती है। अभी थोड़े साल पहले तक भी ये परंपरा भारत में रही कि बाप के वर्षे का हकदार बच्चे बनते रहे, माता को कोई हिस्सा नहीं मिलता था। अभी तो भगवान भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है षष्ठी पर, इसलिए फिर भी ये नियम पक्का कर दिया है सरकार ने। जब से शिवरात्रि की छुट्टी मनाना शुरू किया कि माता का भी हिस्सा प्रॉपर्टी में होना चाहिए, तो अभी माता को कुछ हिस्सा मिल रहा है। माताओं कन्याओं को भी हर प्रकार की नौकरी में उनको हिस्सा दिया जा रहा है। तो भगवान आया हुआ है, भगवान माताओं का मर्तबा बढ़ा रहा है, तो सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को माता का मर्तबा बनाना पड़ेगा। अगर माता का बच्चा ही माता का पति बनकर के बैठ जाए, उसके ऊपर हुक्म चलाने लगे तो इससे जास्ती और दुर्गति की बात और क्या हो सकती है। मुरली में बोला जुलुम कर दिया, जुलुम हो गया। कृष्ण बच्चे को माता का पति बना के बैठा दिया। अभी ये मूल भूल जब खलास हो जाएगी, समाप्त तो हो जाएगी, तो दुनिया सुधरने लगेगी। पहले पहले किसकी बुद्धि में से खलास होना चाहिए है? कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की बुद्धि में से ये बात निकल जानी चाहिए कि गीता का भगवान निराकार शिवशंकर भोलेनाथ है, कृष्ण की आत्मा नहीं है। कृष्ण तो षष्ठी का पहला पत्ता है। वो बीज नहीं है, बीज तो रुद्रमाला के जो पहले मणके हैं, ऊपर के दो मणके, एक माता के रूप में बीज और एक पिता के रूप में बीज, वो ही विश्व के माता पिता हैं। तो बताया श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है, वो माता जिसका गायन होता है वो कोई जड़ पुस्तक नहीं है, कोई चैतन्य गीता माता है। भगवान के मुखकमल से निकला हुआ गीता का ज्ञान है। यज्ञ के आदि में भी जो ज्ञान भगवान ने सूर्य को दिया था, उस सूर्य के द्वारा पहले पहले उस माता को प्राप्त हुआ। वो माता जगत जननी गाई जाती है। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर फिर वो भी ऊंचते ऊंच की ही गाई हुई होगी ना। गाया जाएगा, महिमा गाई जाएगी तो मुख से गाई जाएगी या बिंदु निराकार के द्वारा गाई जाएगी? मुख से गाई जाएगी। तो गीता हो गई सर्वशास्त्र शिरोमणि, बाकी सब शास्त्र हैं उनके बाल बच्चे। जो भी दुनिया में शासन करने के विधान बनाए गए हैं हर धर्म में, वो सब बाल बच्चे हैं। और रचना से कब वर्षा मिल नहीं सकता, बाल बच्चों को रचना कहा जाता है। रचयिता से ही वर्षा मिलता है। अगर रचना को मानेंगे भी तो अल्पकाल के लिए मानना पड़े। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनको पढ़ने पर अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए सुख मिलता है। और ये तो भगवान की गाई हुई गीता है, इससे 21 जन्मों का अनवरतन सुख मिलता है। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाई अल्पकाल की है वो सब मनुष्य पढ़ाते हैं, उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है। फिर दूसरे जन्म में नए सिरे पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहां तो एक ही निराकार बाप है, जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, कोई मनुष्य तो नहीं दे सकता। वो मनुष्य तो सन्नाटे पैन ही बनाए देते हैं, कौड़ी मिसल जिंदगी बनाए देते हैं मनुष्यों की। बुद्धि में कौड़ी ही रमी रहती है और बाप बनाते हैं हीरा, बर्थ पाउंड। तो इस दुनिया को कहा जाता है शैतानी रावण राज्य। रावण को शैतान कहा जाता है, परंतु उनको शैतान क्यों कहते हैं ये कोई नहीं जानते। शैतान और भगवान, अब देखो गवर्नमेंट कहती है कि छूत अछूत निकाल दो, छुआछूत निकाली जावे। गांधी जी भी मेहतरों आदि के साथ बैठ करके खाना खाते थे, कहते थे कि कोई भेदभाव नहीं रखो। अच्छा, नियम तो बनाए दिया, लेकिन खुद गवर्नमेंट शंकराचार्य को हाथ तो लगावे। नहीं लगा सकते, छू भी नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर आज सब लोग जाकर के उनके आगे नमन करते हैं, समझते हैं कि यह तो महंत हैं। क्या है महंत? माना महाअंत। दुनिया में मनुष्यों की मौत होती है तो कहते अंत हुआ, अंतकाल आ गया। वो तो सबका अलग अलग है, टाइम पर थोड़े समय के लिए आता ही है, वो तो सामान्य अंत हो गया। लेकिन वो है महंत, सारी सृष्टि का महान अंत करने वाले। लेकिन क्या ये मनुष्य गुरु का टाइटल है? सारी मनुष्य सृष्टि का विनाश करना, अंत का टाइटल लेकर बैठ जाना, ये मनुष्य गुरुओं का काम है? बड़े बड़े इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक धर्म पिताएं आए, वो भी पुराने धर्मों का, पुरानी चलन का, पुराने संस्कारों का, पुराने रीति रस्म रिवाजों का अंत नहीं कर सके। खुद ही इस दुनिया में मिट्टी में मिलकर के रह गए, नीचे गिरते चले गए, दुनिया का परिवर्तन करने के निमित्त नहीं बन सके। ये महंत का टाइटल तो उसी का गाया हुआ है जो महाकाल गाया जाता है। कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारी मनुष्य सृष्टि काल के गाल में जाते हुए देखी जाएगी, लेकिन उसको काल के गाल में जाते हुए कोई नहीं देख सकेगा। ये उसका टाइटल है महंत, मनुष्य गुरुओं का टाइटल नहीं है। वो महाकाल संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। तो बाप कहते हैं कि वो तो हिरण्यकश्यप जैसे हैं, जो अपने को ऐसे ऐसे टाइटल रखा करके बैठते हैं, शिवो अहम् ब्रह्मास्मि, महंत श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज भगवान खुद कहते हैं कि जो अपन को ईश्वर मानते हैं वो बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं तुम सभी ईश्वर के बच्चे हो ना, सर्वव्यापी कहने पर अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। ईश्वर कहा जाता है तो उसका अर्थ ही होता है ईश माना शासन करने वाला, वर माना श्रेष्ठ। शासन करने वालों में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ उसको कहा जाता है ईश्वर। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो एक ही होगा या सर्वव्यापी होगा, सब में परमात्मा है तो फादरहुड कहा जाता है। सब फादर ही फादर है तो फिर सुख शांति का वर्षा कहां से मिलेगा। बेहद का फादर तो एक ही होगा ना, सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। सर्वव्यापी हो तो किसी का दुख कौन हरेगा। भगवान को तो कहते हैं दुख हरता सुख करता, फादर ही फादर हो करके सब बैठ जाएं, फिर तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो बाप समझाते हैं ये तो है ही रावण राज्य, 10 सिरों का राज्य है, ये एक का राज्य नहीं है, यहां एक का शासन नहीं है, अनेकों का शासन है, उसको कहा जाता है रावण राज्य। ये भी ड्रामा में नूद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर करके दिखाया है राम राज्य और रावण राज्य। राम राज्य की क्या खासियत, धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक के हाथ में, और रावण राज्य की क्या खासियत, धर्म सत्ता राज्य सत्ता अनेकों के हाथ में। अनेक कीमत पर चलने से बनता है रावण राज्य, और एक कीमत पर चलने से बनता है राम राज्य, इसलिए चित्रों में क्लियर करके दिखाया भी हुआ है। तुम बच्चों को बुद्धि में है कि हम परसोत्तम संगम युग पर हैं, हम सिर्फ संगम युग में नहीं है, पुरुषोत्तम संगम युग कहा ही तब जाता है जब पुरुषों में उत्तम बनने वाला षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होने लगता है। कब से प्रत्यक्ष होता है, 1976 से, जब से 10 साल की घोषणा का ऐलान किया हुआ था तब से पहले पहले ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठना शुरू होता है कि जो भी शरीर रूपी पुरी में सोने वाले आत्माएं हैं उनमें उत्तम से उत्तम पाटधारी कौन है, वो ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठ जाता है। समझते हैं कि बाप पुरुषोत्तम बनाने के लिए आए हुए हैं। वो है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव, जो आकर के पुरुषों को उत्तम देवता बनाता है। जैसे बैरिस्टर्स डॉक्टर आदि पढ़ाते हैं तो जैसे पढ़ाने वाले होते हैं वैसे ही मर्तबा पाने वाले होते हैं। समझते हैं कि इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। यहां तो तुम सत्य के संग में बैठे हो, इस दुनिया में सब असत्य हैं, झूठे हैं। सत्य तो सिर्फ एक ही है जिसकी सत्यनारायण की कथा गाई हुई है। सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती। अगर वो भी सत्य हुई होती 100% तो उसकी भी कथा गाई जाती। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, गॉड इज वन कहा जाता है, सत्य एक होता है, बाकी सब सत्य साबित हो जाते हैं। उस सत्य बाप से ही तुम सत्य धाम में जाते हो। तुमने चित्र भी बनाया हुआ है सीढ़ी का, उस चित्र में दिखाया गया है कि सब आत्माएं उस सत्य बाप के साथ परम धाम रही है। कौन सा चित्र है? झाड़ के चित्र में ऊपर शंकर का चित्र दिखाया हुआ है, जिसको संसार के लोग शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में याद करते हैं, शिव शंकर मिला के एक कर देते हैं। तुमको तो पता है कि शिव की आत्मा अलग, शंकर की आत्मा अलग। वो शिव ही शंकर में प्रवेश करता है और शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है। बाकी शिव का नाम ब्रह्मा के साथ नहीं जोड़ा जाता, शिव का नाम विष्णु के साथ नहीं जोड़ा जाता, शिव का नाम सिर्फ 33 करोड़ देवताओं के बीच एक शंकर के साथ जोड़ा जाता है। बताया कि उससे ही तुम सत्य धाम जाते हो। सत्य धाम दो हैं, एक है आत्माओं का धाम और दूसरा है देवताओं का धाम। मनुष्य ही ऊंचे उठते हैं, देवता बन जाते हैं। ओम शांति।
सौ में आने वाले 84 जन्म नहीं लेंगे तो फिर कौन लेंगे? जब 100 में आने वाले 84 जन्म नहीं लेंगे तो कौन लेंगे?
बस 16,000
जो दुनिया की चुनी हुई बीज रूप आत्माएं हैं, और उन चुनी हुई आत्माओं में भी जिनका चुनाव हुआ है, कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई, हर धर्म में 108 की माला या 100 की माला घुमाई जाती है, सब उनकी मान्यता करते हैं। और
सोलागर कैसे परिजन में कैसे आएंगे? सोलागर आत्माएं कैसे परिजन में?
16,000 आत्माओं में
अलग अलग धर्म के होना।
16,000 आत्माओं के बारे में बोला है कि 16,000 में ऐसे भी है जो लास्ट जन्म में जाकर के राजा ही हो ऊंच पद पाते हैं, नाम मात्र का प्रिंस प्रिंस से बन करके रह जाते हैं, राजा ही तो नहीं पाते। और इससे पहले के जन्मों में दास दासी बनते रहते हैं, उनसे तो अच्छा साहूकार बनना। साहूकारों के घर में ढेर सारे दास दासी होते हैं, तो साहूकार बनना अच्छा है या दास दासी बनते रहना अच्छा? 108 के लिए तो नहीं बोला, 108 के लिए बोला, 100 के लिए बोला कि 100 की 108 की माला में आने से अच्छा है साहूकार बनते रहना है। साहूकार बनना फिर भी अच्छा है, दास दासी अक्षर ही खराब है।
साहूकार प्रजा कभी राजा बनते?
कभी कभी बनते हैं, जो ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं। बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे तो जन्म जन्मांतर राजा बनते हैं। 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बनता है। कम पुरुषार्थ करेंगे तो 1-2 जन्म के राजा बनेंगे, राजा तो बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बन करके तो नहीं रह जाएंगे। और
बाबा बिंदु की अवस्था और सुषुप्ति, सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति,
हाँ जी,
और बिंदु की अवस्था, इसमें अंतर क्या
है? सुषुप्ति स्वप्न और साकार, लौकिक दुनिया में 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। साकारी अवस्था में देह की याद रहती है, देह के संबंधियों की याद रहती है, देह की दुनिया याद आती है, और स्वप्न अवस्था में भी देह की याद आती है, देह की दुनिया याद आती है, लेकिन प्रैक्टिकल में याद नहीं होती, स्वप्न मात्र है। और तीसरी अवस्था है सुसुप्ति अवस्था, वो लौकिक दुनिया की बात हुई, कुछ याद नहीं रहता। उठेंगे, आंख खुलेगी, अगर रात्रि है तो घड़ी देखना पड़ेगा, ये नहीं पता चलेगा कि हम कितनी देर सोए, कुछ याद नहीं रहता। और अलौकिक दुनिया में साकारी, आकारी और निराकारी, ये 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन अंतर क्या है? साकारी अवस्था होती है तो देह और देह के संबंधी याद आते हैं, लेकिन बीच बीच में बाप और बाप का ज्ञान भी याद आता है। और आकारी स्टेज में साकारी दुनिया याद नहीं आती, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता है, सेवा की प्लानिंग चलती है, और नई दुनिया याद रहती है। नई दुनिया के नजारे बुद्धि में आते, और जो निराकारी अवस्था है उसके लिए बोला है कि तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो ऐसा ब्राह्मणों का संगठन होगा जहां बाप और हम बच्चे होंगे, देह की स्मृति नहीं होगी लेकिन आत्मा की स्मृति जरूर होगी। और बाप की स्मृति भी हो सकती है, मैं आत्मा ज्योतिबिंदु और मेरा बाप भी ज्योति बिंदु स्वरूप, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज वाला, ये याद रहेगा और कुछ याद नहीं रहेगा। तो सुसुप्ति अवस्था दुनिया की अवस्था और अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में निराकारी स्टेज, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो सुसुप्ति अवस्था है नील स्टेज, ये ब्राह्मणों की निराकारी स्टेज नील स्टेज नहीं है, ये बीज रूप स्टेज है। और
ज्योति अवस्था दुर्गा दुर्गा अवस्था क्या होता है?
तुरिया अवस्था में रहने वाला सिर्फ शिव ज्योति बिंदु है, उसे सदा शिव कहा जाता है। आत्माएं उस तुरिया अवस्था में नहीं रह सकती सदा काल के लिए, वो तुरिया पार्टधारी है, वो सदा काल के लिए अभोक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा है, असोचता है। हम आत्माएं सदा काल के लिए असोचता, अभोक्ता, अकर्ता नहीं बन सकते। और यहाँ संगम युग में सदा काल के लिए कर्म अकर्म बनते हैं क्या? सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं उस वो यहाँ की स्थिति के आधार पर। यहाँ जब बाप की याद रहती है, निराकारी स्टेज रहती है, मनन चिंतन मन की स्टेज रहती है, तो अच्छी शूटिंग होती है सतयुग त्रेता की। और जब यहाँ खराब अवस्था होती है तो कहाँ की शूटिंग होती है? द्वापर कलयुग की शूटिंग हो जाती। यहाँ जब हम दूसरों से प्रभावित होते रहते तो प्रजा बनने की शूटिंग होती रहती, और यहाँ जब एक बाप से ही प्रभावित रहते हैं और किसी की बात मानने की इच्छा नहीं होती तो हम सतयुग त्रेता की शूटिंग करते हैं। श्रीमत पर चलते हैं तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं, मनमत या मनुष्य मत मिक्स करके चलते हैं तब 63 जन्मों की प्रारब्ध बनती है।
शिव भगवान दुनिया पे आकर के रचना रचती है, शिव भगवान दुनिया पे आकर के रचना रचती है, उसमें सबसे श्रेष्ठ रचना विष्णु होता है या जगदम्बा होता है या लक्ष्मी होता है?
शिव बाबा आकर के जो रचना रचते हैं उस रचना में श्रेष्ठ रचना वो कही जाएगी जो ऐसा पुरुषार्थ करने वाली है कुछ समय तक जो लगातार चरती कला का पुरुषार्थ हो, उतरती का कला का पुरुषार्थ न हो। तो जगदम्बा, लक्ष्मी या सतयुगी कृष्ण, इनमें कौन सा ऐसा पार्टधारी है जो लगातार चलती कला का पुरुषार्थी हो? एक बार चलती कला हो जाएगी तो उतरती कला नहीं होगी जब तक इस दुनिया का विनाश न हो जाए। कौन सा पाठधारी है वो? जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है। क्या वो सिर्फ भारतवासियों की अम्बा नहीं है, सारा जगत माना असुर भी है। दुनिया में असुरों की संख्या ज्यादा है या देवताओं की संख्या ज्यादा है? तो जगदम्बा की गोद में 500 करोड़ पल्ले के हकदार, और लक्ष्मी की गोद में देव आत्माएं ही है, पालना लेने की अधिकारी बनती है। तो ज्यादा कौन सी माता को संग को संग का लगेगा? जगदम्बा को ज्यादा कुसंग लगता है, इसलिए जगदम्बा के लिए बोला है मुरली में कि जगदम्बा महाकाली का पार्ट बजाती है। और लक्ष्मी महागौरी का पार्ट बजाती है। श्रेष्ठ संग रहेगा तो श्रेष्ठ पार्ट, बाप ने जो लक्ष्य दिया है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, वो लक्ष्य ही श्रेष्ठ है। नारी से जगदम्बा बनने का लक्ष्य नहीं दिया है, नर से सतयुग का कृष्ण बनने का लक्ष्य नहीं दिया है, नर से डायरेक्ट नारायण बनने का लक्ष्य दिया है। सतयुग का कृष्ण पहले प्रिंस बनेगा पुरुषार्थ करने के बाद में नारायण बनेगा। तो ये लक्ष्य बाप का दिया हुआ नहीं है। और
समय बेकार हो गया, और ध्यान और याद में अंतर क्या है?
दीदार माने देखना, दीदा कहते हैं आंख को, आंख की पुतली को। दीदार माने आंख से जो देखा जाए। कोई कोई साक्षात्कार में जाने वाले खुली आंखों से साक्षात्कार भी करते हैं, उसको दीदार, इन आंखों से देखा। और ध्यान तो मन की चीज है, आंखें बंद होती है, साक्षात्कार करते रहते हैं। और मन और दिल और दिमाग दो चीजें कही जाती है, बुद्धि कहो और दिल कहो, दिल कहो या मन कहो, बात एक ही। कहते हमारा दिल आ गया इस व्यक्ति के ऊपर या इस वस्तु के ऊपर, ये व्यक्ति या ये वस्तु हमें हासिल जरूर करनी, तो ये दिल की बात हुई, मन की बात नहीं हुई। मन की बात हुई, दिल की बात हुई, बुद्धि की बात नहीं हुई। बुद्धि कारण और कार्य का विश्लेषण करने वाली होती है, फैसला करने वाली होती है। तो बुद्धि ऊंची चीज है, और मन कहो या दिल कहो वह नीची चीज है। बुद्धि का परिवर्तन पहले होता है या मन का परिवर्तन पहले होता है?
मन का परिवर्तन है?
मन बुद्धि और संस्कार आ आत्मा के तीन कार्य करता है। शिव परमात्मा के भी तीन कार्य करता है, ब्रह्मा रूपी मन विष्णु रूपी संस्कार और शंकर रूपी तीसरा नेत्र बुद्धि का नेत्र तीसरा नेत्र। नंबर बार दिखाए गए हैं नीचे मन उसके ऊपर संस्कार और संस्कार के ऊपर भी बुद्धि। संस्कार कब परिवर्तन होंगे? जब बुद्धि पक्का फैसला कर ले। हिलने डुलने वाला नहीं तो संस्कार परिवर्तन होते हैं। बुद्धि और संस्कार के परिवर्तन होने से मन भी परिवर्तित हो जाता है।
तो शरीरधारी को तीन
एक मिनट
शरीरधारी को
तो बुद्धि और मन और बीच में संस्कार शक्ति कौन किसको कंट्रोल करता है? बुद्धि मन को भी कंट्रोल करती है। दिल के ऊपर नियंत्रण रखना होता है। दिल तो बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ उछाले मारता है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान का तीसरा नेत्र जिसको मिला हुआ है वो उस मन रूपी घोड़े को कंट्रोल कर लेता है। तो दिल है नीचे की ओर और बुद्धि है ऊपर की ओर।